आमोस अध्याय 9। आमोस अध्याय 9 में आमोस की अंतिम भविष्यवाणी है। वो कहता है, आमोस अध्याय 9 पद 1, मैंने प्रभु को वेदी के ऊपर खड़ा देखा और उसने कहा, खंबे के कंगनियों पर मार जिससे डेवड़ियां हिले और उनको सब लोगों के सर पर गिराकर टुकड़े टुकड़े कर, और जो नाश होने से बचे उन्हें मैं तलवार से घात करूंगा, उनमें से एक भी ना भाग निकलेगा और जो अपने को बचाए वो बचने ना पाएगा। परमेश्वर बड़ा कंपन। परमेश्वर कहता है कि वे कोशिश कर ले और भाग जाएं, परंतु बचने ना पाएंगे। वे सोचेंगे कि वहां जाकर बच गए, परंतु वे बचेंगे नहीं। आमोस अध्याय 9 पद 2 से लेकर 4 तक, क्योंकि चाहे वे खोदकर अधोलोक में उतर जाएं, तो वहां से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा, चाहे वे आकाश पर चढ़ जाए तो वहां से मैं उन्हें उतार लाऊंगा, चाहे वे कर्मेल में छिप जाए परंतु वहां भी मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूंगा, और चाहे वे समुद्र की ताह में मेरी दृष्टि से ओट हो, वहां भी मैं सर्प को उन्हें डसने की आज्ञा दूंगा, और चाहे शत्रु उन्हें हांग कर बंदवाई में ले जाएं, वहां भी मैं आज्ञा देकर तलवार से उन्हें घात कराऊंगा, और मैं उन पर भलाई करने के लिए नहीं बुराई ही करने के लिए दृष्टि करूंगा। परमेश्वर का दंड धर्म त्यागी इसराइल पर अवश्य आएगा, चाहे कब्र में, चाहे स्वर्ग में, चाहे कर्मेल, चाहे समुद्र के नीचे, चाहे कैद में हो, उनका बचाव ना होगा। परमेश्वर की तलवार उनका पीछा करेगी और उन पर अत्याचार होगा। दुष्टता के विरुद्ध परमेश्वर का हाथ उठ चुका है। आमोस अध्याय 9 पद 5 और 6, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के स्पर्श करने से पृथ्वी पिघलती है और उसके सारे रहने वाले विलाप करते हैं, और वो सब की सब मिस्र की नदी के समान हो जाती है जो बढ़ती है फिर लहरें मारती और घट जाती है, जो आकाश में अपनी कोठरियां बनाता और अपने आकाश मंडल की नेव पृथ्वी पर डालता और समुद्र का जल धरती पर बहा देता है, उसी का नाम यहोवा है। ये पद परमेश्वर की घोषणा है। वो अधर्मी इसराइल के साथ ऐसा ही करने वाला है। आमोस अध्याय 9 पद 7 और 8, हे इसराइलियों, यहोवा की ये वाणी है, क्या तुम मेरे लेखे कूशियों के समान नहीं हो, पूरी तरह मूर्ति पूजक? क्या मैं इसराइल को मिस्र देश से और पलिस्तियों को कप्तोर से नहीं निकाल लाया और आरामियों को कीर से नहीं लाया? देखो, परमेश्वर यहोवा की दृष्टि इस पापमय राज्य पर लगी है और मैं इसको धरती पर से नाश करूंगा, तो भी मैं पूरी रीति से याकूब के घराने को नाश न करूंगा, यहोवा की ये वाणी है। परंतु परमेश्वर कुछ जनों को बचाए रखेगा। परमेश्वर पूरी तरह से उन्हें नाश नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर के पास याकूब के लिए और इसराइल के लोगों के लिए एक महान उद्देश्य है। आमोस अध्याय 9 पद 9 और 10, मेरी आज्ञा से इसराइल का घराना सब जातियों में ऐसा चला जाएगा जैसा अन्न चलनी में चला जाता है, परंतु उसका एक भी पुष्ट दाना भूमि पर ना गिरेगा। मेरी प्रजा में के सब पापी जो कहते हैं कि वो विपत्ति हम पर ना पड़ेगी और ना हमें घेरेगी, वे सब तलवार से मारे जाएंगे। परमेश्वर अपने आने वाले दंड की घोषणा करता है। इसराइल पृथ्वी के सभी देशों में तितर बितर किए जाएंगे। यदि आप यहूदियों के इतिहास को देखें तो पाएंगे कि ऐसा ही हुआ था। वो अन्य देशों में ले जाए गए थे और बिखर गए थे। आमोस अध्याय 9 पद 11। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा और जैसा वो प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूंगा। दाऊद के राज्य को पुनर्स्थापित करने की प्रतिज्ञा, उसके मंडप को पुनर्स्थापित करने की प्रतिज्ञा। ऐसे लोग भी हैं जो इस वचन का अनुवाद यूं करते हैं, यरूशलेम के मंदिर का निर्माण नहीं होगा लेकिन सिर्फ दाऊद के मंडप का। वे यरूशलेम में मंडप पुनः बनाएंगे। लेकिन और भी वचन है जो साथ में मंदिर के पुनर्स्थापना की घोषणा करते हैं, उसका माप, उसकी दीवारें आदि। दाऊद के मंडप का अर्थ है दाऊद के राज्य का पुनर्निर्माण होना, वो दाऊद का राज्य जो गिर गया। वो खंडरों को फिर बनाएगा और जैसा वो प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूंगा। आमोस अध्याय 9 पद 12। जिससे वे बचे हुए एदोमियों को वरन सब अन्य जातियों को जो मेरी कहलाती है अपने अधिकार में ले। यहोवा जो ये काम पूरा करता है उसकी यही वाणी है। ये परमेश्वर के भविष्य के राज्यकाल से संबंधित भविष्यवाणी है कि जिसकी आज भी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। आमोस अध्याय 9 पद 13 से लेकर 15 तक। यहोवा की ये भी वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लवने वालों को और दाख रौंदने वाला बीज बोने वाले को जा लेगा और पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से बह निकलेगा। मैं अपने प्रजा इसराइल के बंधुओं को फेर ले आऊंगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे। वे दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे और बगीचे लगाकर उनके फल खाएंगे। मैं उन्हें उन्हीं की भूमि पर बोऊंगा और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर कभी उखाड़े ना जाएंगे। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। ये पुनर्स्थापना की आज्ञा है। वो दिन आएगा, मैं चाहता हूं कि आप इसराइल आए और दाख की बारियां देख सके जो वहां लगाई गई है और नष्ट हुए शहर जिसका पुनर्निर्माण किया गया है उन्हें देख पाए। परमेश्वर ने इस शहर के पुनर्निर्माण की घोषणा की थी। वहां जाकर आप ठीक ऐसा ही देखेंगे। परमेश्वर लोगों को देश में वापस लौटा लाया है। उन्होंने खंडरों को बनाया, दाख की बारियां लगाई, बगीचे, खेत और वाटिका बनाए और आप परमेश्वर के वचन को अपनी आंखों के सामने पूरा होते देखेंगे। परमेश्वर अपने वचन में सच्चा है। जब परमेश्वर कहता है तो बेहतर है कि तुम विश्वास करो, क्योंकि निश्चित है कि वैसा ही होगा। परमेश्वर अपनी भविष्यवाणी के एक शब्द में भी चूकता नहीं। बहुत बार लोग कहते हैं कि उनके पास भविष्यवाणी का वरदान है और होने वाली बहुत सी बातों को बताने की योग्यता उनमें है। उन्होंने कुछ घटनाओं को पहले से बता दिया जो वैसे ही घटित हुई। इससे ये सिद्ध नहीं होता कि उनका पहले से बताना परमेश्वर की ओर से था। किसी मनुष्य एक नबी की तरह कुछ कहना आत्मा से प्रेरित है, तब उसकी भविष्यवाणी 100% सही होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर एक भी गलती नहीं करता। बाइबल इसे सिद्ध करती है और कहती है भविष्यवाणी का एक भी शब्द जाता ना रहेगा। इस क्षण तक भविष्यवाणी का एक भी शब्द खाली नहीं गया है। बाइबल कहती है इब्रानियों अध्याय 2:1-3। इस कारण हमें चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। क्योंकि जो वचन स्वर्ग दूतों के द्वारा कहा गया था जब स्थिर रहा और हरेक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्योंकि बच सकते हैं। परमेश्वर इसराइल के बारे में कहता है, कोई बचाव नहीं है, मुझे चिंता नहीं, क्योंकि चाहे वे खोदकर अधोलोक में उतर जाए तो वहां से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा, चाहे वे आकाश पर चढ़ जाए तो वहां से मैं उन्हें उतार लाऊंगा, चाहे वे कर्मेल में छिप जाए परंतु वहां भी मैं उन्हें पकड़ लूंगा, और चाहे वे समुद्र की ताह में मेरी दृष्टि से ओट हो, वहां भी मैं सर्प को उन्हें डसने की आज्ञा दूंगा। यदि वे गुलामी में चले जाए तो भी बचाव नहीं, वहां भी तलवार उनका पीछा करेगी, परमेश्वर से बचने का कोई रास्ता नहीं है। हम कैसे बचेंगे? कोई बचाव नहीं, बस एक बचाव है जो परमेश्वर ने स्वयं दिया है, और वो बचाव है यीशु मसीह। वही बड़ा उद्धार है। हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से अनदेखा करके निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं? परमेश्वर ने बचाव का एक रास्ता बनाया है, और वो है यीशु मसीह के द्वारा, और यदि आप उसे अस्वीकार करें तब केवल रह जाता है परमेश्वर के अग्निमय कोप को देखना जो वो अपने शत्रुओं पर बरसाएगा। मेरा कहने का अर्थ है कि ये बिल्कुल सीधी और साफ बात है, वचन के अनुसार एक एक बात पूरी होगी। परमेश्वर ने अपना वचन पूरा किया, आपके पास विश्वास करने के सिद्ध कारण है, वो अपना वचन पूरा करने में स्थिर है, और जो उसने आरंभ किया है उसे वो पूरा करेगा। इसराइल को दंड मिला, वे दूसरे देशों में बंदी बनाकर ले जाए गए, तो भी परमेश्वर ने उन्हें बचाया, क्योंकि उसने कहा था वे सब नाश न होंगे। ये एक आश्चर्य है कि इसराइल देश आज भी अस्तित्व में है, यहूदी आज भी यहूदी है, जबकि कई वर्षों तक उनके पास अपना कोई देश नहीं था। 2000 वर्षों से वे विभिन्न देशों में रहे तो भी वो एक राष्ट्र के रूप में पहचाने जाने वाला समुदाय है। ऐसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें से कुछ को बचा रखूंगा और अपने देश में फिर से लाऊंगा और बसाऊंगा। वे खंडरों को बनाएंगे, वे अपनी दाग की बारियां लगाएंगे, उन्होंने ऐसा कर दिखाया है, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। परमेश्वर ने अपना वचन पूरा किया और करता रहेगा, और जो भविष्यवाणी के पूरी होने से रह गई है उसे भी वो पूरा करेगा, और वो महान दिन आएगा जब यीशु फिर आएगा और परमेश्वर का राज्य स्थापित करेगा। वो दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा और तब सारा परिदृश्य ठीक हो जाएगा, हम उसके साथ रहेंगे और राज्य करेंगे। आमोस एक रोचक व्यक्तित्व था, गुल्लर तोड़ने वाला एक चरवाहा था, तो भी परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया, परमेश्वर ने अपनी भविष्यवाणी पूरी की। आमोस ने हमारे लिए आत्मिक रूप का महान प्रमाण दिया। अगली पुस्तक ओबद्या और फिर रोचक योना। योना की कहानी मुझे लुभाती है।